सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर हर। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर हम विगत कई वर्षों से विचार कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, प्रबोध है, प्रतिष्ठ बोध है, मतलब अनुभवात्मक ज्ञान का जो अमृत है, सारे शास्त्रों का जो सार रूप है, निचोड़ है। तो उसमें तीन ही चीजें बताई, एक वैराग्य, दूसरा बोध और तीसरी भक्ति। वैराग्य ज्ञान की पात्रता देता है। वैराग्य क्या देता है? ज्ञान की पात्रता। ये रोज में बता रहा हूं, ध्यान देना है। बिना वैराग्य के ज्ञान फैशन हो जाएगा, बल्कि विकृत कर देगा, ये पक्का जान लेना। जैसे योग है ना, योग, योग के जो आठ साधन हैं, उसमें कौन कौन साधन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम और नियम ये योग के क्या है? नियम है। यदि यम नियम न होवे, आप आसन प्राणायाम करो, तो उस आसन और प्राणायाम से शरीर तो आपका स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ शरीर से भोग की सिद्धि हो जाएगी, लेकिन समाधि की सिद्धि नहीं होगी, ये निश्चित जान लेना। क्या होगा? केवल आसन और क्या किया? प्राणायाम किया, तो योग नहीं, बल्कि और बोले योग नहीं, योगा बन जाएगा। आजकल जो बन गया, योग नहीं रह गया है, आज क्या हो गया? क्या? योगा। चाहे आसन प्राणायाम कर लो अथवा जिम ज्वाइन कर लो, आजकल जिम है ना इंग्लिश भाषा में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। लेकिन यम और नियम के साथ रहा कौन? आसन और प्राणायाम, तो आपको कहां तक ले जाएगा? समाधि तक ले जाएगा। और यम और नियम के बिना यदि आसन और प्राणायाम रहा, तो हां इतना है, शरीर को स्वस्थ कर देगा, और स्वस्थ शरीर से फिर आप भोग की सिद्धि करोगे, संसार को ही पाना चाहोगे, समाधि में आप निष्ठ होना नहीं चाहोगे। इसी प्रकार से ज्ञान का जो नींव है वह कौन है? वैराग्य है। यदि जीवन में वैराग्य है तो ज्ञान आपको निर्विकल्प समाधि तक ले जाएगा, और यदि ज्ञान नहीं रहा, ओ वैराग्य नहीं रहा, केवल आप ज्ञानी बन गए, आजकल हो गया ज्ञानी बन गए हैं लोग, तो मैं वेदांत सुनता हूं महाराज जी, तो वेदांत सुनना एक फैशन बन जाएगा, आजकल ये हो ही गया है। मेरी सीट है, मेरी जगह है, उनका संसार का दिखावा चमक धमक छूटता है ही नहीं, मेरी तेरी छूटती है नहीं, हम वेदांत श्रवण कर रहे हैं तो ऐसे वेदांत श्रवण से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी एक जगह पे बैठना है, वो मेरी सीट है, उस पर दूसरा बैठ गया तो आप पीछे जाओ उठो। अरे काहे की सीट जब शरीर ही अपना नहीं है, वेदांत में ही तो बोलते हैं ना, जब शरीर ही अपना नहीं है तो तुम्हारी सीट कहां से आ गई। नहीं महाराज जी, बैठे बैठे उस जगह पे हमारा परमांग आ गया है। अरे परमांग का, उस परमात्मा का परमांग कहां नहीं है मेरे बता दो। वेदांत यही तो सिखाता है कि सब जगह सर्वम खलुदम ब्रह्म, फिर एक विशेष स्थान पे परमांग है और दूसरे विशेष स्थान पे परमांग नहीं है, ये तुम्हारी भ्रांति है। वेदांत सुन रहे हो कि वो कौन सी तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हो? ठीक है, तंत्र मंत्र की साधनाओं में सब होगा निश्चय, लेकिन वेदांत में ऐसा कोई निश्चय? वेदांत तो बंबई में रहे तो, हरिद्वार में रहे तो। कबीर ने क्या कहा, यदि भाई काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से क्या मिलता है, नरक, तो मैं तो पक्का मगहर में जाकर मरता हूं, देखता हूं कौन भाई का लाल मेरे को नरक में ले जाता है। जिसकी दृष्टि में सारा देश ही एक परमात्मा रूप हो गया, सारा काल परमात्मा रूप हो गया, सारी वस्तु परमात्मा रूप हो गई, जो व्यक्ति देश काल वस्तु से ऊपर उठ गया उसके लिए क्या अपना अक्या? लेकिन नहीं, हम वेदांत सुनते हैं तो वेदांत सुनना आपका क्या हो जाता, फैशन है, दिखावा मात्र हो जाता है। हम वेदांती हैं, वो नाम नहीं बताऊंगा संस्थाओं का, कहां कहां फैशन है। वेदांत सुनना क्या है, एक फैशन है, कहां कहां है वो आप खुद समझ जाना। कुछ संस्थाएं हैं बड़ी वीआईपी वेदांत की संस्थाएं हैं, उसका नाम नहीं हम बताएंगे, लेकिन फिर भी वैराग्य, जिसे झंडा आगे रहता नहीं रहता है, आप ले चलो तो झंडा पीछे रहता है आगे रहता है, आगे एकदम, तो ज्ञान के साथ वैराग्य रहता ही रहता है, आगे आगे वैराग्य चलता है तो ज्ञान की योग्यता देता है। तो वैराग्य का साधन बोलो भाई, वैराग्य का साधन ज्ञान, ज्ञान का साधन वैराग्य, ज्ञान का साधन क्या है, वैराग्य है। लेकिन फिर भी वैराग्य का डिवाइड करो, वैराग्य का साधन विषयों में दोष दृष्टि, वैराग्य का स्वरूप भूल जा रहे हैं आप लोग, वैराग्य का साधन विषयों में दोष दृष्टि, वैराग्य हो गया है या नहीं हो गया उसका स्वरूप क्या है, जिहासा, त्यागने की इच्छा, कोई विषय मिले भोग मिले तो इसको क्या हो, त्यागने की इच्छा। वैराग्य का फल दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, फल क्या है, दीनता का अभाव, दीनता का अभाव, दीन बनते ना, दीनता का अभाव, फिर ज्ञान होगा। ज्ञान का साधन श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण तो हम करा ही रहे हैं, आप करते ही हो, मनन आपको करना पड़ेगा, मनन मैं नहीं कराऊंगा, युक्तियों जो श्रवण किए हो, श्रवण किए गए विषय का युक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा, युक्तियों के द्वारा जमा देना, सॉलिड कर देना। भाई देखो, मिस्त्री सीमेंट गारा लगा के चला जाता है, नहीं जाता, इसके बाद आपका काम रहता नहीं रहता, क्या रहता है, तराई करना, और तराई न करो, अब मिस्त्री थोड़ी तराई करेगा, तराई तो करना क्या है, आपका काम है ना। तो उसी प्रकार से श्रवण किया, श्रवण के बाद जाके थोड़ा तराई करना, तराई किसे करना है, युक्तियों से उसको जमा देना, ये क्या है, मनन है। और जो जम गया है उसमें पूरी तरह से स्थित हो जाना, फिर दूसरी तरफ देखना नहीं, यह निधिध्यासन है। भाई आपने सीमेंट से जमाया, एम्बुजा सीमेंट से दीवार, अब फिर किसी ने कहा नहीं एसीसी सीमेंट बहुत बढ़िया है, दूसरा मैहर सीमेंट बहुत बढ़िया है, अब जो जम गया अब दूसरा सीमेंट कितना भी अच्छा हुआ बुरा है उसकी तरफ अब तोड़ के दूसरे सीमेंट लगा के जोड़ोगे क्या। तो जो निश्चय करके बुद्धि में निश्चय कर लिया है, अब उसी में स्थिर हो जाना, इसका नाम है निदिध्यासन। क्या है? निदिध्यासन। फिर इसका स्वरूप क्या है? आपको ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या है? कहते हैं तप्त मिथ्या विवेचनम, असली और नकली को देखते ही पहचान में आ जाए। शरीर को देख, वस्त्र को देखते ही सूत दिख जाए, शरीर को देखते ही क्या दिख जाए, शरीर के भीतर सत्ता देने वाला जो अधिष्ठान है आत्मा वो दिख जाए। शरीर पे आपकी दृष्टि जा ही न, किस पे जाए? शरीर के भीतर सत्ता देने वाले उस परमात्मा पे दृष्टि चली जाए। तत्व मिथ्या विवेचन। फिर ज्ञान का फल क्या है? पुनर्ग्रंथे रनुदयो। एक ग्रंथि होती ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थी हूं, ऐसी ग्रंथि भूल करके भी पैदा ही ना हो। जैसे मैं आवे न, मैं कहते ही आपका अपना स्वरूप स्फुरित हो जाए। क्या हो जाए? जैसे मैं बोलूं, मैं के बोलते ही ये भावना ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, बल्कि मैं कहते ही आपका अपना स्वरूप स्फुरित हो जाए, प्रकट हो जाए। कौन सा स्वरूप? यही बताए, ज्ञानमय है, सच्चिदानंद है, भूतेषु अंतर्यामी, प्रकृतेह परह, परमात्मा एव अहम, वही ही मैं हूं, ऐसा भाव आ जाए। फिर मैं अपने आप को साकार नहीं समझूंगा, मैं क्या समझूंगा? निराकारी हूं, मैं मोटा गोरा काला नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, सब मैं हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। मतलब नाम रूप से अलग है, सबके रूपों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विराजमान हूं, ऐसा भाव आ जाएगा तो आपको ज्ञान हो गया। लेकिन यह ज्ञान लंबे समय तक टिका रहे उसने चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान एक बार तो हो गया, अब फिर से संसार का चिंतन शुरू हो गया, क्योंकि संसार के चिंतन का तो अभ्यास भी लंबे समय तक है। और एक क्षण के लिए ज्ञान हुआ तो चिंतन लंबा नहीं टिकेगा, फिर संसार उस पर हावी हो जाएगा, अज्ञान को थोड़े काल के बाद तिरोहित तो हो जाएगा, फिर छिप जाएगा। ये नियम है ज्ञान के लिए। अर्जुन को भी ज्ञान हो गया, नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात माया उच्चित। लेकिन अर्जुन को निदिध्यासन अथवा भक्ति माने चिंतन करने का अवसर मिला ही नहीं, युद्ध करना पड़ा, फिर राज्य भोग भोगना पड़ा, अर्जुन का वह ज्ञान छिप गया। अर्जुन फिर भगवान के पास जाते हैं, हे प्रभु, इस युद्ध के मैदान में इतने कोलाहल के बीच में जो आपने ज्ञान दिया था ना, तो बड़ी शांति मिली थी, आज शांति के सारे साधन मौजूद हैं, सुख के सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन जो वहां शांति थी ना कोलाहल में, वह शांति अब है ही नहीं। आप ने जो उपदेश दिया था वह उपदेश विस्मितो हम, मैं भूल गया हूं, हे प्रभु दोबारा दो न। कहूं गलती तो माना नहीं मना है, तो ऐसे कहीं कहते हैं भगवान ने डांटा अर्जुन को, लेकिन उत्तर गीता में भगवान ने डांटा नहीं, भगवान बड़े खुश हुए कि अच्छा ठीक है, तूने अपनी गलती को स्वीकार तो किया नहीं किया, ठीक है मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। तो फिर भगवान ने उनको उपदेश दिया, वह उपदेश किसके नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर गीता। भाई आप में गलती करें, उत्तर गीता। आ उत्तर गीता पे गौड़ पादाचार्य जी की क्या है, टीका भी है, कई लोगों ने लिया भी है, उस पर हिंदी में मैंने थोड़ा लिखा भी है, हिंदी में व्याख्या भी उस पर हुई है। चलो अब भक्ति माने क्या हुआ? चिंतन। भक्ति माने क्या हुआ? चिंतन, उस परमात्मा का ही हर समय चिंतन। तो उस चिंतन के लिए बैठना उतना क्या करना पड़ेगा बताओ? किसी ने कहा एक माला जाप करना है बहाना है चिंतन का, उसका उत्सव करना, उसका बर्थडे मना लेना, यह सब बर्थडे मनाना उसका क्या है? बहाना है। जैसे हम घर से वापस आते हैं तो पत्नी का चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं? पुत्र का चिंतन करते नहीं करते। तो उसी प्रकार से चलते फिरते उठते बैठते हर काल उस परमात्मा का ही, परमात्मा ने अपने स्वरूप का ही चिंतन बना रहे, इसका नाम है भक्ति। ये भक्ति हो गई, लेकिन अब किसकी भक्ति करें? भक्ति के विषय में कुछ हमारे मन में एक संशय है। कुछ लोग सगुण की भक्ति करते हैं, कुछ लोग निर्गुण की भक्ति करते हैं। तो कहा यहां सगुण और निर्गुण में कोई भेद है ही नहीं। जो सगुण दिख रहा है ना, वह वास्तव में कौन है? निर्गुण ही है। ऐसा श्रुतियों में, पुराणों में गूढ़तया छिपा करके अभिव्यक्त किया है। ये रहस्य मैंने दो दिन आपको बताए, कहां उपनिषदों में किन किन अर्थों को कैसे छिपाया है। पूरा उपनिषद ही पढ़ो तो बहुत बढ़िया प्रसंग आता है। एक एक बड़ा ध्यान देने की एक कहानी पढ़ी होगी। एक राजा था, मैं भूल रहा हूं, वो कभी लड़की बन जाता था, कभी लड़का बन जाता था। वो लड़की पीला थे, उसका पुरुष का नाम क्या था? पुरुष इला तो लड़की बनी थी, लड़की पैदा हुई थी। नहीं नहीं, नाम बुद्ध नहीं, बुद्ध से शादी हुई थी इसकी। इला की शादी किससे हुई थी? बुद्ध से हुई थी। ओ, राजा का मैं भी नाम बोला, चलो जो भी है। तो अब छह महीना पुरुष, छह महीने स्त्री का मतलब क्या हुआ कि क्या कभी कभी हम पुरुषत्व भाव में स्थित हो जाते हैं। पुरुष माने क्या हुआ? अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो आप उस समय क्या बने हो? क्या बने हो? पुरुष हो। और कभी कभी हम अपने पुरुषत्व भाव को छोड़ देते हैं, और कहां हमारी बुद्धि हो जाती है? स्त्री में। स्त्री माने क्या हुआ? भोग्य बुद्धि हो जाती है। तो जैसे भोग्य बुद्धि हो गई तो आप क्या बन जाते हो? स्त्री बन जाते हो। तो हम कभी पुरुष बनते हैं, कभी हम क्या बनते हैं? स्त्री बनते हैं। ये उस राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी किसकी है? हम सब की कहानी है। अब बताओ, आप हमेशा पुरुष बनते हो कि स्त्री बनते हो? सही बताना, कब रहते हो? प्रेमपुरी में पुरुष बन जाते हैं। अब प्रेमपुरी से बाहर जाते ही, जैसे वो राजा ने जब उस कैंपस में आया, शिव जी के कैंपस में, तो क्या बन गया? स्त्री बन गया, घोड़ा घोड़ी बन गया। और फिर उसने विवाह कर लिया, उससे बुद्ध से बाद में विवाह करता है नहीं। अब प्रेमपुरी के बाहर जैसे जाते हैं, तो प्रेमपुरी का एक कैंपस है, जैसे वो शंकर जी का वहां एक कैंपस था, नहीं का पार्वती के साथ शंकर जी विहार कर रहे हैं, नहीं कथा मालूम? नहीं, चित्रकेतु नहीं भाई, भागवत का नौवें स्कंध में पहली ही कहानी है। भागवत के नौवें स्कंध की पहली ही कहानी है। आप लोग भी नहीं याद कर ले, मेरे को याद नहीं आ रहा है। राजा, पहले राजा सूर्यवंशी राजाओं की कथाओं के बारे में जब सुना, तो पहले वशिष्ठ ने कहा ओ, पुत्र के लिए याग करना शुरू किया। तो उनकी पत्नी गई, कहा मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? लड़की चाहिए। तो लड़की पैदा हो गई, तो उसका नाम रखा इला। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि आपका यज्ञ आदि भी झूठा हो जाता है क्या? तो वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान किया, तो कहा कि नहीं, होता ने जब आहुति डाली तो उसमें स्त्री का संकल्प किया, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं, मैं अपने तप के बल से इसको क्या बना देता हूं? पुरुष बना देता हूं। तो स्त्री को उन्होंने क्या किया? पुरुष बना दिया। तो भाई गुरु ही तो पुरुष बनाएगा, नहीं बनाएगा बता? आपको कौन बनाया है पुरुष? तो वशिष्ठ जी महाराज ने स्त्री को क्या बना दिया? पुरुष बना दिया। तो आप लोग पुरुष हो गए हो? तो भोग बुद्धि से आपकी स्थिति कहां हो गई? भोक्ता पुरुष में हो गई। लेकिन वो संसार में शिकार खेलने गया, कहां गया? शिकार खेलने गया ना, कहां? कानन में। तो कौन से कानन में शिकार खेलने आप गए हो? ये संसार रूपी कानन ही तो है ना, यहां शिकार खेलने गए तो अपने पुरुषपने को भूल गए, अपने भोक्तापने को भूल गए, और फिर से क्या बन गए? स्त्री बन गए। फिर से स्त्री बन गए, हम भोग की बुद्धि नहीं होगी क्या? 24 घंटे भोगने में हमारी बुद्धि बनी हुई है, तो हम इस संसार के कानन में आकर के क्या बन गए हैं? स्त्री बन गए। फिर बेचारा जब काफी दिनों तक नहीं आया तो बड़ा फिर परेशान हुआ। अब परेशान हुआ उसके पिताजी, तो ध्यानस्थ होकर देखा तो कहा कि अब क्या करें, वो तो स्त्री बन गया है, अब परमानेंट स्त्री बन गया है। तो कहा शिव की आराधना करो। शिव की आराधना से वह फिर से क्या बन जाएगा। तो शिव की आराधना किया तो उसने कहा 6 महीने पुरुष रहेगा, 6 महीने क्या रहेगा, स्त्री रहेगा। यही हालत हमारी है कि उस कैंपस में आकर के तो व्यक्ति स्त्री बनता है, लेकिन इस वाले कैंपस में आकर क्या बन जाता है, यहाँ भी तप का प्रभाव है। यहाँ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के तप का प्रभाव है, संतों का यहाँ प्रभाव है कि इस शंकर जी का जो कैंपस था, कानन था, उस कानन में तो पुरुष जाके क्या बनता था, स्त्री बन जाता है। और यहाँ आकर के जो भी स्त्री भाव लेके आता है वह भी यहाँ आके क्या बनता है, पुरुष बन जाता है। लेकिन जैसे ही इस कैंपस से बाहर गया तो फिर क्या बन जाता है, स्त्री बन जाता है। तो आप लोग भी क्या बनना है, परमानेंट पुरुष ही बन जाओ, अब स्त्री मत बनना। स्त्री माने अपनी बुद्धि को भोग में मत डालना, जितना भोग है मिथ्या है, कल्पित है, झूठे हैं। हमेशा क्या बने रहना, पुरुष ही बने रहना। तो ये सब बड़े बड़े गूढ़ रहस्य हैं, कहां भागवत में, लेकिन चिंतन करेंगे तभी वह रहस्य उद्भूत होगा। सही बता, मैं भी एक दो बार किया तो हमें भी नहीं समझ में आया क्या नाटकबाजी चल रही है भागवत की। नहीं लगता नाटकबाजी कि वो स्त्री था तो उसको पुरुष बना दिया, वो पुरुष था फिर उस एरिया में गया तो फिर से स्त्री बन गया, फिर वशिष्ठ जी ने उसको फिर से पुरुष बना दिया तो फिर 6 महीने पुरुष रहेगा, 6 महीने स्त्री रहेगा। थोड़ा अटपटा नहीं लगता क्या, ऐसा कैसे हो गया। और ऐसे साइंटिस्टिक तरीके से तो भैया आजकल वो सब चेंज होने शुरू हो गए हैं, इसलिए पुराण में शंका नहीं करनी चाहिए, जो लिखा है उसे मान लो, लेकिन स्थूल बुद्धि के लिए वैसा मान लो। लेकिन जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है, जो गूढ़ अर्थ को समझने की क्षमता रखता है, उसकी दृष्टि में तो यही निश्चय होता है कि गुरु की कृपा से हम अपने स्त्रैण भाव को छोड़ते हैं, भोग्य भाव को छोड़ते हैं, और कहां हमारी स्थिति होती है, पुरुषत्व में स्थिति होती है। तो हम क्या बन जाते हैं, स्त्री से हम पैदा हुए हैं, स्त्री ही हम क्या पैदा हुए हैं, नहीं स्त्री पैदा हुए हैं भाई, भोग में ही पैदा हुए हैं। लेकिन गुरु की कृपा होती है तो हम क्या बन जाते हैं, स्त्री भाव को छोड़ करके हम कहां बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं। लेकिन पुरुष तो बन गए, बहुत बढ़िया हुआ, ईश्वर की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई। लेकिन संसार रूपी कानन में, संसार रूपी जंगल में जो क्षेत्र शिव का ही है ना, शिव का ही क्षेत्र है, संसार शिव ने ही तो रचा। अरे शिव ब्रह्मा विष्णु अलग नहीं है, भगवान का क्षेत्र इसमें रचे, तो फिर अपने हम पुरुषत्व भाव को छोड़ देते हैं और फिर हम क्या बन जाते हैं, स्त्री बन जाते हैं। भोग बुद्धि फिर से हमारी हो जाती है, फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं या फिर गुरु की कृपा से उसको ऐसा निश्चय होता है कि वो 6 महीने पुरुष रहेगा, 6 महीने स्त्री रहेगा। तो वही हालत हमारी भी हो गई है कि हम प्रेमपुरी में आके क्या बन जाते हैं, पुरुष, अब प्रेमपुरी के बाहर स्त्री हो जाते हैं। तो आप हमेशा पुरुष ही रहो, मैं ये आपको प्रार्थना करता हूं कि भोग में भी जाकर के आप में भोग बुद्धि आवे ही न, हमेशा क्या बने रहो, अपने स्वरूप में ही स्थित रहो तो आप हमेशा पुरुष ही रहोगे। ऐसे बहुत कथाएं मैं क्या बताऊं, गज ग्राह की लड़ाई है, उसमें भी देखो गज क्या है, देहाभिमानी व्यक्ति का नाम ही गज है, कहते ना पाल के हाथी बना हुआ काम नहीं करता, अग्राह मौत है, और दोनों के बीच में जन्म जन्मांतर से लड़ाई चल रही है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। उस मौत से बचने के लिए उसने सारा उपाय किया, परिवार को बुलाया, अपनी शक्ति से रोकना चाहा, कभी हम बचते हैं कभी वो खींचता है। इस मौत से बचने का उपाय एक ही है, ईश्वर की शरण में है न, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदय तद विश्वेश पादा अंबुज दीर्घ नौका। भगवान के चरण कमलों को ही एक नाव बना लो, चरण कमल माने वही अपने स्वरूप चिंतन रूपी नाव पर विराजमान हो जाओ, देखो इस संसार सागर से आप स्वाभाविक ही पार कर ले जाओगे। जब तक उस स्वरूप चिंतन की नाव पर विराजमान नहीं होगे, विश्वेश माने जो सारा संसार का अधिष्ठान है, जो सारे संसार के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उस परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? परमात्मा कहते ही नहीं, सही बताऊं, आपके भीतर एक शक्ल आ जाता है। ये बड़ी मुश्किल काम है। कृष्ण कहते ही एक शक्ल आ जाती है, विष्णु कहते ही क्या आ जाती है? चार भुजाधारी एक शक्ल आ जाती है। लेकिन विष्णु कहते ही वो शक्ल ना आवे, क्या आवे? भूतेषु अंतर्यामी, सारे प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से जो विद्यमान है, जो ज्ञानमय है, जो सच्चिदामय है, जो उस शरीर से भी अलग है, विष्णु के शरीर से भी क्या है, कृष्ण के शरीर से भी जो क्या है, अलग है, जो काले गोरे से भी अलग है, वही तो मैं हूं, वही तो वह है। ऐसा आपके बुद्धि में निश्चय होवे तो समझ लेना आपने स्वाध्याय और चिंतन किया है। हाँ, ये ध्यान देना। आया समझ में? भूतेषु अंतर्यामी, जो सारे प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो सच्चिदा नंद स्वरूप है, जो इस शरीर से अलग है, स एव अयम यदकुल तिलक, वही तो यह यदकुल का तिलक है, कृष्ण है। कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण कौन है? यह जो अंतर्यामी रूप से स्थित है, अहम आत्मा गुदाकेश। हाँ, कृष्ण शरीरे स्थित नहीं, बल्कि कहाँ है? सर्वभूता से स्थित है, सारे प्राणियों के भीतर स्थित है। अहम आदिश्च मध्यमच भूता नाम मंत एवच, इस कृष्ण के शरीर के पहले भी मैं था, अब कृष्ण के शरीर में तो मैं हूं ही, और कृष्ण के ही शरीर में नहीं, इस समय भी सर्वभूता से स्थित है, सारे प्राणियों के भीतर मैं ही स्थित हूं, अब कोई प्राणी नहीं रहेगा तो भी मेरी सत्ता उतनी ही रहेगी, वह मैं आत्मा हूं, आत्मा माने कृष्ण मैं ही हूं। आगे चले, पूर्व पक्षी ने एक संशय खड़ा कर दिया, संशय का समाधान करना है। महाराज जी, नानु सगुण है, कृष्ण तो क्या है? सगुण है, गुण वाले नहीं, गुणातीत कहां है? उनमें भी बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा बुरा काम किया, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, गुण वाले हैं। दूसरा क्या है? दृश्य तनु, दूसरी शंका, उनका शरीर दिखाई देता है, किस रंग के हैं? काले रंग के हैं। हाँ? दो भुजा है, चार भुजा है, वो आप लोग अपने आप संशय दूर कर लेना, ये हम भी नहीं कर पाए। तो दृश्य तनु क्या है? शरीर उनका क्या है? दिखाई दे रहा है। और क्या है? तथा एक देश अधिवासश्च, कृष्ण एक देश में रहते हैं, नहीं रहते, पहले कहां रहते थे? गोकुल में, फिर कहां चले गए? वृंदावन में, वृंदावन से फिर चले गए कहां? मथुरा में, और फिर मथुरा से कहां चले गए? द्वारिका में। बताओ, एक देश में रहते नहीं रहते हैं? जिसमें मथुरा में रहते हैं उसमें द्वारिका में नहीं है, और जिसमें द्वारिका में रहते हैं उसमें मथुरा में नहीं है। सक और जो परमात्मा है वह तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण है ही नहीं, उनका शरीर भी दिखाई नहीं देता है, और कहते फिर भी मैंने देखा है, कई लोग कहते मैंने देखा है। हाँ, देखा है, हम भी मानते हैं देखा होगा आपने, लेकिन जिसको देखा है ना, वो दृश्य है कि दृष्टा था? तो दृश्य जड़ होता है, चेतन होता है, अथवा जिसको देखा है वो आपके मन की भावना से ही वो रूप लेकर खड़ा हो गया नहीं? अरे भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, देखा नहीं देखा है बताओ, देखा नहीं? बंबई वाले तो देखे ही होंगे। उसमें जब उसको गांधी जी दिख सकते हैं, 24 घंटे चिंतन कर रहा है, तो आप उसी में डूब जाओ, हम कहते भागवत में ही डूब जाओ, तो आपको वह परमात्मा नहीं दिखेंगे क्या? पक्का दिख जाएंगे, 100% दिख जाएंगे। हम एक दिन एक किसी से फोन कर लेते हैं, आधा घंटा फोन पे बात कर लेते हैं, तो रात में सपना वही आ जाता है, सच बताऊं, वही सीन के सपने आ जाते हैं, नहीं आते? तो जागृत में भी वही चिंतन आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो वो जो दृश्य जगत है वह आपके मन का भाव ही है। मन का क्या है? तो दृश्य तनु हूं, कृष्ण का तो शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मा परमात्मा का कोई शरीर दिखाई नहीं देता। अब परमात्मा सर्वव्यापक है, सब देश में रहते हैं। अब कृष्ण कहां रहते हैं? एक देश अधिवासश्च, एक देश में रहते हैं। इतने नहीं, परमात्मा में न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है, लेकिन कृष्ण में प्राकृतवत सामान्य पुरुषों की तरह है, राग रोष युक्त है। किसी से राग दिखता है और किसी से क्या करता है, रोष दिखता है। तो स कथम भवेत परात्मा, वह कृष्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं? एक प्रश्न आया किसके मन में? पूर्व पक्षी के मन में ऐसा प्रश्न आया। हमें भी कभी कभी लग जाता था पहले कि अर्जुन के प्रति थोड़ा राग और किसके प्रति, दुर्योधन के प्रति थोड़ा द्वेष। ऐसा परमात्मा को क्या करना था? असुरों के प्रति द्वेष और देवताओं के प्रति राग, ऐसा तो परमात्मा को शोभा नहीं देता ना, है नहीं? बेचारा कितना बढ़िया शासन कर रहा था, कौन, राजा बलि, है नहीं? कोई कमी थी क्या? अच्छल से जाकर के, अरे उनको शासन करने की जिम्मेदारी निभानी थी, तो शासन वो कर ही रहा था। कोई अत्याचार दुराचार पापाचार उसके राज्य में तो नहीं था। किसके राज्य में? औरों के राज्य में भले होगा, लेकिन उसके राज्य में कोई ऐसा था नहीं। और फिर उसको जाके क्या बामन बन के गए बेचारे का, पूरा जमीन नाप करके वो कर दिए। तो परमात्मा में भी क्या दिख रहा है? थोड़ा सा राग द्वेष ये सब दिख रहा है। तो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? अब सारे प्रश्न हो गए, अब प्रश्नों का समाधान ही इस अध्याय में बताया जाएगा, इसका भगवान का अनुग्रह बताया जाएगा। दो ही अध्याय बचे हैं। इतरे दृश्य पदार्थ लक्षन्ते नेन चक्षुषा सर्वे, भगवान ननया दृष्टया न लक्षन्ते ज्ञान दिग्गम्य। कहते अनेन चक्षुषा, इस आंख से, किस आंख से? चर्म चक्षु से। कौन सी चक्षु से? अनेन चक्षुषा, इस चर्म चक्षुओं से। कहते हैं इतरे दृश्य पदार्थ, दूसरे दृश्य पदार्थ ही दिखाई दे सकते हैं। इस आंख से स्थूल वस्तु ही दिखाई देगी, सूक्ष्म वस्तु दिखाई नहीं देगी। कहते हैं भगवान अनया दृष्टिया न लक्षते, भगवान को इस दृष्टि से देखना चाहो, कौन सी दृष्टि से? आंख से देखना चाहोगे तो भगवान दिखाई देने वाले हैं ही नहीं। वह दिखाई देंगे तो कौन सी दृष्टि दिखाई देंगे? ज्ञान दिग्गम्य। यदि आपको ज्ञान रूपी दृष्टि मिल गई ना, तो आपको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। भगवान की सत्ता किसी बात दूसरी कोई सत्ता, अब इस आंखों से देखोगे भैया तो कहीं राग दिखाई देगा, कहीं क्या दिखाई देगा, द्वेष दिखाई देगा, कहीं अच्छा दिखाई देगा और कहीं बुरा दिखाई देगा। और थोड़ा सा वासना वाली दृष्टि, ये दृष्टि स्थूल दृष्टि है, वासना से ग्रसित दृष्टि है। देखो हमारा अपने बच्चे के प्रति प्रेम है नहीं, राग है, तो बच्चे की कोई गलती होवे तो आपको कोई गलती दिखाई देती है क्या? क्यों? आपकी दृष्टि में स्थूलता छिपी हुई है, वासना छिपी हुई, मेरा है, मेरे के कारण आप सही जजमेंट है? बुरा भी काम कर रहा है ना, तो उसमें भी आपको क्या दिखाई देती है? अच्छाई दिखाई देती है। यही देख लो, हम लोग एक पार्टी के साथ संबंध बना लेते हैं, किसके साथ है? अब वो पार्टी लाख अच्छा करे लेकिन क्या दिखाई देता है? सब बुराई दिखाई देती है। यदि नहीं, यदि किसी पार्टी के साथ हमारा राग का संबंध है तो उसको गलत काम भी करे, टैक्स जैसे बढ़ा भी देवे, लगता है भाई टैक्स बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, टैक्स नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास कैसे होगा, उसकी उस बुराई में भी क्या दिखाई देगी? अच्छाई दिखाई देगी। और किसी के साथ हमारा द्वेष बुद्धि है तो लाख अच्छा भी काम करेगा तो अच्छाई में भी क्या दिखाई देगी? बुराई दिखाई देगी, पक्का जान लेना। क्योंकि हमारी दृष्टि किससे नियंत्रित होती है? हमारे मन से। हमारी दृष्टि किससे नियंत्रित होती है? अरे भाई दृष्टि मन से तो नियंत्रित होती है ना ये। अरे अपना बच्चा गाली दे देवे तो अच्छा लगता है बुरा लगता है? अरे अपना ही तो है, गाली दे रहा है तो क्या बुरा कर रहा है, कोई दूसरा थोड़ी गाली दे रहा है। क्योंकि वो दूसरा गाली देने में तो शब्द वही है, लेकिन दूसरे की गाली आपको क्या देती है, दुख देती है। अपनों की गाली आपको क्या दे रही है, सुख दे रही है। तो कहने का भाव मात्र इतना है कि आपकी दृष्टि किससे नियंत्रित हो रही है, आपके मन से। अब मन में यदि वासनाओं से स्थूलता है, सूक्ष्मता नहीं है, व्यापकता नहीं है, तो जगत की यथार्थ अवलोकन करने में मन समर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि उस परमात्मा को देखना है तो मन के भीतर के सारे संस्कारों को हटा करके दृष्टि को क्या बनाना पड़ेगा, सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, तभी वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देगी। अरे सामान्य सी, मैं तो आप लोग सब एक वस्त्र ही है, देखना एक वस्त्र है। वस्त्र में यदि वस्त्र को देखने में भी यदि आपकी वासना है तो किसी वस्त्र को छू करके आप अपने आप को क्या मानोगे, कृतकृत्य हो गया, वाह बड़ा आनंद आ गया, वस्त्र छू लिया। तो अब किसी वस्त्र को छू करके आपके मन में क्या आ जाएगा, द्वेष हो जाएगा। लेकिन यही वस्त्र विक्रेता से देखो पूछो तो सारे वस्त्रों को वह क्या समझता है, एक सूत समझता है। उसको छूने न छूने से न कोई राग है न उसको कोई द्वेष है, क्योंकि उसके भीतर उस वस्त्र की वासना समाप्त हो चुकी है। तो हमें तो किसको देखना है, भगवान को देखना है। तो भगवान को देखने के लिए अपनी आंखों को क्या बनाना है, सूक्ष्म बनाना है। सूक्ष्म बना करके ही उस भगवान को हम देख सकते हैं। कहते महाराज इस आंख से देखें तो क्या आपत्ति है, दिख तो रहा वही चीज। तो कहते नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं 198 श्लोक में। यद विश्वरूप दर्शन समय पार्थाय दत्तवान भगवान दिव्यम चक्षु तस्मात अदृश्यता युज्यते इंद्री हरव। कहते यद विश्वरूप दर्शन समय, जिस समय भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को, कौन सा रूप, विश्वरूप का दर्शन दिखा रहे हैं। किसको, अपने विश्वरूप विराट रूप, विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। किसके लिए, पार्थाय, पार्थ के लिए, अर्जुन के लिए। तो दत्तवान भगवान दिव्यम चक्षु, भगवान ने उसको कौन सी चक्षु दिया, दिव्य चक्षु दिया। कौन सी चक्षु, दिव्य चक्षु दिया। यदि इसी आंख से काम चल जाता तो दिव्य चक्षु देखने की देने की आवश्यकता क्या थी बताओ। अरे भाई मेरे इसी आंख से यदि हमें दिखाई दे जाता तो चश्मा लगाने की आवश्यकता क्या थी। चश्मा लगाया हूं इससे यही पता चल रहा है कि इस वाली आंख से काम नहीं चल रहा है, अब चश्मा लगा करके दूसरी आंख पहनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि इसी आंख से काम चल जाता तो चश्मे की कोई आवश्यकता थी नहीं, 2000 रुपए खर्च करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं थी। उसी प्रकार से यदि अर्जुन को अर्जुन की आंख से काम चल जाता तो भगवान को दिव्य आंख देने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो दत्तवान भगवान दिव्य चक्षु, भगवान ने अर्जुन को कौन सी आंख दिया, दिव्य चक्षु दिया। दिव्य माने हाँ ज्ञान चक्षु, ऐसा नहीं समझा कि महाराज आप भी दे दो, मैं दूंगा अभी दूंगा, अरे आपको भी विराट रूप दिखाऊंगा ना, चिंता करना। कौन सा रूप दिखाऊंगा, विराट रूप आपको भी दिखाऊंगा, देखने की बस थोड़ी सी आप भी आंख खोलो, मैं दिखाऊंगा, आप आंख बंद कर लो तो भाई नहीं काम चलेगा, आप खोलो तो दिखेगा। दिव्य चक्षु तस्मात, इसी कारण से सिद्ध होता है अदृश्यता युज्यते नृहर। नृ माने मनुष्य रूप में धारण किए हुए जो हरि है, उस हरि की अदृश्यता है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मनुष्य के रूप में नहीं, इस सारे संसार के रूप में धारण किए हुए जो भगवान का रूप है, इन आंखों से देखो तो दिखाई नहीं देगा। थोड़ा विवेक वाली आंख से देखो तो सारा संसार ही उस परमात्मा से अलग दूसरी कुछ दिखेगा ही नहीं। तो थोड़ा देखना है, नहीं देखना है, इसको मैंने कई बार दिखाया भी है लेकिन भूल गए होंगे तो फिर देख लो, देखना है ना। चलो भाई देखते हैं, भगवान की आंख देखते हैं, भगवान की आंख से इस सारे संसार को देखते हैं। अभी इस आंख से देखते हैं क्या दिखता है, पेड़ है, पौधे हैं, आदमी हैं, औरत हैं, लकड़ी है, इमारत है, पशु है, कितने चीज दिखाई दे रही है। अनेक चीज दिख रही है कि एक चीज दिख रही है? किस आंख से? इस वाली आंख से। अब थोड़ी सी आंख को बारीक बना लो, अंजन लगा लो। क्या लगाना है? अंजन। पहला अंजन, कई अंजन लगाने हैं, एक अंजन, दूसरा, तीसरा, पांच अंजन लगाएंगे, पांचों अंजनों के बाद देखना, ठीक है ना? थोड़ा अचानक सूक्ष्म कर देंगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसे थोड़ा थोड़ा आंख खोलते, जब योगा करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हल्का हल्का आंख खोलते हैं, तो योगा के माध्यम से हल्की हल्की आंख खोलते जाओ। अचानक खोल लोगे तो जो सामने आएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तभी जला के भस्म नहीं करना है किसी को, थोड़ा थोड़ा आंख खोलना है। एक बीज जमीन में बोते हो, कितना बोया? एक बीज जमीन में बोया, और उसी बीज से एक विशाल वृक्ष तैयार हुआ, पत्ते, फल, फूल, मोटा डंठल, ये सब कहां से आया? लेकिन बीज तो एक ग्राम का था, और एक कुंतल का बीज, यदि साइंस के हिसाब से तौला जाए तो एक ग्राम का बीज, एक कुंतल का बीज कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो सोचो कि मिट्टी का ही रूप है। क्या है? बीज एक आपका वो मशीन है, कौन सी मशीन होती है? आरओ। आपके घर में आरओ लगाना है? वाटर प्योरीफायर, पानी को शुद्ध करने के लिए मशीन है ना? तो उस मशीन में क्या डालते हो? पानी जाता है तो 9 गिलास पानी बहा देगा तो 1 गिलास आपको पानी मिलेगा, मतलब 10 गिलास में पानी कितना मिल रहा है? 1 गिलास शुद्ध मिला, और 9 गिलास क्या हुआ? वेस्ट, अशुद्ध। वेस्ट क्या कहो? अशुद्ध कहो, यही तो निकला ना निष्कर्ष। ऐसे ही वो जो बीज है ना, वो मिट्टी का प्योरीफायर है। क्या है? वो मिट्टी को शुद्ध किया। अरे भाई आप खुद सोचो, मल मूत्र खाद सब कुछ डालते नहीं डालते हो किसमें? उस जमीन में। और बीज उसकी तत्व को ले लेता है, और स्थूल वस्तु गंध को और कितनी विकृत चीजें उनको क्या करता है? छोड़ देता है। तो वह मिट्टी ही एक कुंतल बन गया कि नहीं बन गया? तो अब आप पत्ते के रूप में कौन है, फल के रूप में कौन है, डंठल के रूप में कौन है? मिट्टी। ध्यान देना, उस पत्ते को मैंने खाया तो मेरे मांस के रूप में कौन है, रक्त के रूप में कौन है? जो भी है, उस बीज को या उस पत्ते को पशु ने खाया, उसके दूध के रूप में कौन है? तो सारा संसार क्या है? मिट्टी। ये लकड़ी क्या है? ये ईंट क्या है? तो सारा संसार मिट्टी ही मैं है कि मिट्टी से अलग है? नहीं दिख रहा है आपको? अरे भाई देखो ना, हम क्या करें, देख नहीं पड़ेगा। तो सारा, अब जहां अनेक दिखता था, अब मैं क्या दिख रहा है? बस हाँ, थोड़ा तना कम प्योरीफायर है। एक हम लोग डिस्टिल वाटर निकालते थे, याद होगा साइंस में हम लोग किए हैं, फर्स्ट स्टेज डिस्टिल वाटर, सेकंड स्टेज डिस्टिल वाटर, और थर्ड स्टेज डिस्टिल वाटर होता है। फर्स्ट स्टेज माने क्या हुआ? यहां से उबाला पानी, भाप निकली, भाप को कूल किया और दूसरे फ्लास्क बर्तन में आ गया, वह कौन सा स्टेज है? फर्स्ट। अब उसको फिर उबाला, फिर भाप बन के गया, फिर उसको कूल किया, फिर दूसरे निकला, वह कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। और फिर उसको उबाला, और फिर उसको कूल किया, फिर कहां आया? थर्ड स्टेज में हुआ। तो समझ लेना, ये जो तना है ना, फर्स्ट स्टेज हो गया। कौन सा? जो उसके पत्ते हो गए, वह कौन से हैं? तने से ज्यादा शुद्ध कौन होगा? पत्ता होगा। पत्ते से ज्यादा शुद्ध कौन होगा? फूल होगा। अब फूल से ज्यादा शुद्ध कौन होगा? फल होगा। अब फल से भी ज्यादा शुद्ध उसका रस हो जाएगा, जो उसमें गूदा आदि है। तो कुल मिलाकर के ये सारा संसार क्या दिख रहा है आपको? अब मिट्टीमय, क्या? मृणमय। सारा संसार क्या दिख रहा है? घर ही नहीं मृणमय है, हम सब भी हैं मिट्टी है। और दूसरा तो भाई आप लोग मुंबई वाले लोग हैं, मुंबई वाले लोग आजकल वो सजाते हैं, बड़े बड़े उत्सवों में सजाते हैं, तो सब्जी के ही ना पार्वती बना देंगे, सब्जी के ही गुलाब का फूल बना देंगे, सब्जी का ही सब कुछ बना के सजा देते हैं, सजाते सजाते। आपने देखा नहीं देखा है? अब जितने भी रूप दिख रहे हैं सब सारे रूप किसके हैं? हाँ, वहां तो वेजिटेबल है, सब्जी है। इसे अब सारा संसार किसका है? मिट्टी में। अब चलो आगे बढ़े, थोड़ा एक दूसरा और लगाना है अंजन। एक गमला ले लिया, क्या ले लिया? गमला, उसमें 10 या 20 किलो मिट्टी डाली और एक बीज डाला और उस बीज से मान लो 100 किलो का पेड़ तैयार हुआ। और सच बताऊं, यदि 100 किलो का पेड़ निकाल करके मिट्टी को झाड़ा, झाड़ के तौला, तो मिट्टी 20 का 20 किलो थी। ये कहां से एक किलो कितना आ गई भाई? एक कुंतल कहां से आ गया? बोलो कहां से आया? जल से आया। तो जल माने रसमय, जल माने क्या हुआ? रसमय, मतलब ये पत्ता भी जल ही है, रस ही है, फल भी क्या है? रस है, फूल भी क्या है? रस है, डंठल भी क्या है? रस ही है। तो हम सब सारी दुनिया क्या है? रसमय है, जल ही जल है, जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और न दिखाई देवे तो एक युक्ति और ले लो, समुद्र में क्या भरा है? पक्का 101% क्या है? जल। अरे जल नहीं बाबा, ह्वेल मछली भी समुद्र में है, शार्क मछली भी समुद्र में है, समुद्र के भीतर तमाम वृक्ष भी हैं, समुद्र के भीतर तमाम द्वीप भी हैं, समुद्र के भीतर द्वीप हैं, बाहर, अरे भीतर ही द्वीप तो बाहर प्रकट होता है, भीतर ही द्वीप ना होता तो बाहर प्रकट होता क्या? तो सारा हड्डी उसमें होगा, मछली में नहीं होगी, खून भी होगा, मल भी होगा, लेकिन सब कुछ मिला के क्या है? जल एक जल सलग है। ते हम सब ये पृथ्वी वगैरह सब कुछ क्या है? जलमय ही है, जल से पृथक दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। जरा गंभीर तो नहीं हो रहा भाई? हाँ थोड़ा ध्यान देना है, ज्ञान की कथा है, थोड़ा सा मनोरंजन का साधन नहीं बनाना है, जो आपको सोचने में मजबूर कर दे। आ देखा रहे, शरीर भी जल ही है, 80-90% तो जल ही जल है इसमें, अब 20% जो ठोस दिखता है ना, 20 भी नहीं है। आप कभी उसमें जाके लाश को जब लाते हैं ना, किसमें इलेक्ट्रिक, उसमें तो मुझसे इतना सा निकलता है राख, पूरे शरीर का राख कितना, 100 ग्राम भी नहीं निकलता, सोच लेना। तो स्थूल कितना भाग हुआ, और उस स्थूल को भी यदि गलाया जाए पूरी तरह से तो शायद वो भी लिक्विड नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का भाव, सारा शरीर पूरा विश्व क्या हो गया? जलमय। अब जल कहां डालते हो? नीचे। और जल कहां पहुंचता है? ऊपर की टहनी में। यदि उसमें हीट न होवे, गर्मी न होवे, तो क्या किसी की सत्ता रहेगी क्या? बोलो भाई, मछली में भी एक गर्मी है, भले जल के भीतर रहती है, वृक्ष में भी एक क्या है? हीट है, तभी उस जल को पचा करके मांस रक्त मज्जा बना रहा। तो ये सारा संसार क्या दिख रहा है? अग्निमय ही है। इसको छांदोग में आपने पढ़ा ही होगा, पंचाग्नि, पुरुष अग्नि है, स्त्री अग्नि है, बादल अग्नि है, सारा संसार ही क्या है? अग्निमय ही, अग्नि से ही सारा संसार है। तो क्या हुआ? अग्निमय। अग्नि का भी कारण कौन हो सकता है? तो सब संसार हवा हवाई निकल गया, हवा हवाई है सारा संसार क्या है? क्योंकि वायु है तो अग्नि की सत्ता है, वायु न हो तो अग्नि की सत्ता। और वायु का भेद स्थान कौन है? आकाश। और आकाश का भेद स्थान चैतन्य, आत्मा। सारा संसार क्या दिखा? चैतन्यमय ही है, चैतन्य के सिवा दूसरा कोई संसार है ही नहीं। इसको वहां से स्वप्न वाले दृष्टांत से देख लेना, स्वप्न में इतना संसार दिखता है। दूसरा संसार या तो पहले मनोमय बोलते हैं, स्वप्न का संसार क्या है? मनोमय। लेकिन मन में भी स्वयं स्फुरित होने की शक्ति, यदि मन के साथ चैतन्य मिलेगा तभी मन का संसार बाहर स्फुरित होगा। और मन के साथ चैतन्य न मिले ना, तो स्फुरित होने वाला संसार है ही नहीं। तो मन का भी संसार क्या है? चैतन्यमय ही है। तो स्वप्न में जो कुछ दिखा वह सब क्या है? चैतन्यमयी है, चैतन्य के सिवा दूसरी कोई वस्तु दिख नहीं रहते। विश्व रूप दर्शन देखना, पशु पक्षी कीट पतंगे सब के रूपों में कौन दिख रहा है? वह परमात्मा चैतन्य ही दिख रहा है। दिखा? नहीं महाराज जी, उसमें तो कुछ और दिखाया था। किसमें? गीता जी में, भगवान के दाढ़े में मांस टुकड़े फंसे पड़े हैं। ऐसा टीवी में देखा होगा, हमने तो नहीं देखा। दाढ़ों में फंसा हुआ है, ये सब लिखा है ना। यहां भी देखो, कुत्ता जब पक्षी चबाता है तो वे सब हम किसके दाढ़े में फंसे हुए हैं बताओ? काल के अकाल भी किसका रूप है? उस परमात्मा का रूप है। अब कुत्ते के रूप में भी मैंने देख लिया क्या है, परमात्मा है। और उसमें जो फंसा हुआ जीव, उसके दाढ़े में जो चूहा फंसा हुआ है, वह भी किसके मुंह में फंसा हुआ है? परमात्मा के मुंह में फंसा हुआ है। सारा संसार किसके मुंह में है? परमात्मा के एक मुंह माने एक कोने में है। परमात्मा के मुंह मन के हुआ, अर्जुन को तो एक ब्रह्मांड दिखाया ना, तो एक ब्रह्मांड उस परमात्मा के किस में है? एक कोने में स्थित है, सोचना। और पूरे शरीर में ही उनका ब्रह्मांड का एक एक करना। तो अर्जुन को तो एक भाग दिखाया है केवल, ब्रह्मांड का कितना भाग दिखाया है? एक अंश दिखाया है। तो विश्व रूप दर्शन समय पार्थ आए दत्तवान भगवान, विश्व रूप में अपने आप को दिखाने के लिए सारा संसार मेरे ही भीतर है। यही तो है ना विश्व रूप, सारा संसार किसके ऊपर है, किसके भीतर है? मेरे ही भीतर है, मेरे ही ऊपर अधिष्ठित है। इसको दिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन के लिए कौन सी चक्षु दिया? दिव्य चक्षु दिया। इस कारण से सिद्ध हो रहा है कि अदृश्यता युजते निहरो, मनुष्य रूप में भगवान देखना चाहो तो दिखाई। जब तक अभी तक देखो आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, अभी तक हमें भी दिखाई दे रहा था, ये अंग वस्त्र है, कटी वस्त्र है, ये बनियाइन है, ये टोपी है, ये पगड़ी है। अब थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि देखो कि सब वस्त्रों में आपको सूत दिखेगा, सूत दिखेगा अथवा कपास दिखेगा। अब बाद में कपास की जगह मिट्टी दिखेगा, मिट्टी की जगह जल दिखेगा, जल की जगह क्या क्या दिखेगा भगवान जाने। नहीं तो थोड़ी दिव्य दृष्टि आई, नहीं आई? थोड़ी आई, पक्की आई। अब न देखना, भेद न देखना, और सबके भीतर क्या देखना है? अर्जुन मारी दृष्टि, अभेद दृष्टि। अर्जुन के हाथ ना जोड़ना, भगवान बस देख लिया मैं कांप गया हूं, अब आप इस रूप को तिरोहित कर दो। मैं कहता अर्जुन वाली स्थिति आप न लाना। अब कहना भगवान एक बार देख लिया तो यही रूप दिखाई देवे, अब इस दृष्टि को कभी तिरोहित मत करना, नहीं तो फिर मैं आपको वही दृष्टता कर डालूंगा। कौन सी दृष्टता? जो पहले मैं कहता था, हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, हे। अब ऐसी दृष्टि भूल करके होने न पावे। अर्जुन ने जो किया वो आपने करना है, वो वाला। इस सारे संसार को विश्व रूप देखने के बाद भगवान सब न प्रार्थना करना, हाँ ये पक्का है कि आपका व्यवहार शिथिल हो जाएगा, आपका संसार चौपट हो जाएगा। इसलिए संसार को यदि संभालना है तो क्या करना है? तब प्रार्थना कर लेना, हे भगवान अब इस दृष्टि को क्या कर दो, छिपा लो। अब जैसे आप पहले थे ना वैसे हट जाओ। आपके इस रूप को देख करके मैं क्या कर रहा हूं? कांप रहा हूं। आप लोग कांपना नहीं, आप लोग मजबूत हो गए हो। इसलिए क्या करना है? इस रूप को देखते हुए व्यवहार करना है तो लीला की तरह करना, देखना। यही तो स्थिति हुई, भगवान से दृष्टि छिपी, भगवान ने उस विश्व रूप को छिपाया। अब फिर अर्जुन के मन में राग द्वेष से युक्त हो गया कि नहीं हो गया? बिना राग द्वेष से युक्त होकर के युद्ध होता क्या? शायद हो सकता भगवान का उस दिव्य रूप यदि तिरोहित न होता तो दुर्योधन के प्रति उसका कभी द्वेष आता ही नहीं। मेरा बेटा मर गया अभिमन्यु, उसके लिए मैं प्रतिज्ञा करने वाला हूं, ये सारी वृत्तियां कभी भूल करके आती है ही नहीं। लेकिन भगवान को भी करना था, इसलिए मैंने बताया ना, भगवान कुछ करते वरते नहीं है। भगवान को जो करवाना होता आपसे कहवा लाते हैं। एक कथा है रमन महर्षि की पत्राचार में, कि कोई भगत गया ब्रह्मलोक में दिव्य खड़ाऊ पहन करके। क्या पहन करके? दिव्य खड़ाऊ पहन करके। अरे टाइम हो गया। तो दिव्य खड़ाऊ पहन करके गया तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान जो मांगना हो मांग लो। तो उसने कहा क्या मांगू? पहले मेरे मन एक संशय हो गया है कि जब पैदा होता है तो आप जन्म का भाग्य लिख देते हो, अब आप मांगने के लिए कह रहे हो तो जो नहीं लिखा होगा वो मैं मांग लिया तो, अथवा कुछ लिखा है मैंने उस उल्टा मांग लिया तो, क्या उसको संशोधन करोगे? क्या संशोधन करके अगला लिखोगे? तो कहे तूने बड़ा गोभ प्रश्न पूछा है, सबके सामने बताने वाला है ही नहीं, लेकिन तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं तुम्हारे सामने बता देता हूँ। तो आपके सामने बता दूं ना बता दूं? तो उन्होंने कहा ना मैं नया दूंगा ना कुछ दूंगा, फिर वरदान कैसे दोगे? कहा जो तुम्हें पहले से मिलने वाला है मैं तुम्हारे मुंह से वही निकलवा लूंगा, ठीक न, तुम्हारे मुंह से वही निकलवाऊंगा, वही तो करूंगा और क्या करूंगा। ऐसा ही भगवान से जो करवाना था ना अर्जुन के मुंह से वही निकलवाया कि भगवान अब आप अपने इस रूप को क्या कर दो, छिपा लो, क्योंकि अभी आपको भी नाटक करवाना है। तो भगवान को नाटक करना था ना, तो नाटक करने के कारण अर्जुन के मुंह से निकलवा लिया कि छिपा लो रूप, नहीं तो लड़ाई वड़ाई कुछ होने वाली है नहीं, मैं तो सब में एक परमात्मा को ही देख रहा हूं। और युक्तियां हैं, उन युक्तियों का विचार हम कब करेंगे? कल, क्योंकि परमात्मा के रूप को मजबूत करना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।